واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر والعيش بعد الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سے پہلے ایک فضیلت یاسین شریف کی بتانی ہے. یہ آیات آج ہمارا موضوع ہے اور ہم موضوع کے پابند نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ جو مضامین کی بھیک دیتا ہے وہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. موضوع اور عنوان اس کے ہم پابند نہیں ہوتے. حضرت فرماتے ہیں جو تازہ مال ہو گرم جلیبی وہ لوگوں کو دو. حضرت والا خود بھی یہی معمول تھا. حضرت رٹا رٹایا بیان نہیں کرتے تھے بلکہ جو اللہ تعالیٰ اس موقع پہ عطا فرماتا. بعض دفعہ ہوتا یہ آدمی سوچ کے کچھ آتا ہے بیان کچھ ہوتا ہے. اصل میں سامعین اسی لحاظ کے ہوتے ہیں. جیسا گاہک ہوتا ہے پھر ویسا سودا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا. جیسے گاہک آتے ہیں ویسے سودا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا. سورہ یاسین کی فضیلت کیوں اس لیے چل رہی ہے ہمارے درسوں میں؟ کیونکہ ہمارا جو درس ہوتا ہے صبح اتوار کی صبح 10 بجے, اس میں ہر اتوار کو صبح 10 بجے درس قرآن کا سلسلہ الحمدللہ موجود ہے. تو اس میں سورہ یاسین شریف میں نے چاہا کہ یہ کیونکہ خاص مخصوص چیزیں پڑھا رہے ہیں, پورا تو ہو نہیں پاتا. پورا ہونے کے لیے الگ لوگ چاہیے جو مستقل مزاج بھی ہوں اور سمجھنے والی فہم بھی رکھتے ہوں. ورنہ آدمی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کوئی سمجھ ہی نہیں رہا ہے تو پھر مزہ نہیں آتا. اس کے لیے صرف اور نحو سے زیادہ محویت کی ضرورت, شوق کی ضرورت. صرف اور نحو کے بغیر بھی آدمی سمجھ سکتا ہے. میں نے صرف نحو پڑھا ہے لیکن ہماری صرف نحو بہت اعلیٰ نہیں ہے. دوبارہ پڑھیں گے تو سمجھ لیں گے, لیکن جس کو کہتے ہیں یاد میں ہو اور جو مدرسین ہوتے ہیں ان کا بہت ازبر ہوتا ہے. تو صرف نحو سے زیادہ اس میں شوق ذوق کی ضرورت ہوتی. کلام الہی ہے, اللہ تعالی کا کلام ہے. اللہ کا کلام کلام الملوک ملوک الکلام ہوتا ہے. اس کا ایک حرف پڑھنا بھی ثواب ہے. اب دیکھیے سورہ یاسین شریف جو ہے اس میں میں نے بتایا صاحب معالم العرفان جو حضرت سواتی صاحب رحم اللہ تعالی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس میں 83 آیات ہیں سورہ یاسین میں. یہ تو ہر قرآن میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ اتنی آیات, لیکن وہ الفاظ بھی لکھتے ہیں مولانا سواتی صاحب کہ اس میں 729 الفاظ ہیں سورہ یاسین میں. 729 الفاظ ہیں اور 3000 حروف ہیں اس میں. 3000 حروف, 3000 حروف کو آپ 10 سے ملٹیپلائی کریں جب آپ پڑھیں گے عام حالات میں بغیر دیکھے ہوئے. 10 ایک پر 10 نیکی, 3000 حروف پر 300000 نیکیاں روزانہ آدمی کما سکتا ہے. پڑھے کیا مشکل ہے بتائی. روزانہ دیکھ کے پڑھ لے, 6-7 منٹ 8 منٹ لگتے ہیں وہ مشکل. اگر یاد ہو جائے گا کچھ عرصے میں یاد ہو جائے گا, بس شرط یہ کہ صحیح پڑھے. میرے برابر میں ایک صاحب پڑھ رہے تھے طواف کے دوران, پاکستانی تھے یا ہندوستانی, لہجہ بتا دیتا ہے اردو والے ہیں, ترکیوں کا لہجہ الگ ہوتا ہے. کہتے اللہ اکبر اکبر, کہتے اکبر کو اکبر کہتے. ان کی زبان ہے, ان کو کوئی گناہ تھوڑی ہوگا. تو لیکن پاکستانی ہندوستانی کی زبان پہچانی جاتی. تو وہ ایسے ہی پڑھ رہے تھے اردو اسٹائل میں, یعنی زیر زبر پیش, کوئی یعنی تجوید کا خیال نہیں. تو ہم نے میں سن رہا تھا اس کو, لیکن افسوس ہو رہا تھا کہ پڑھ تو رہا ہے. طواف کے دوران اچھی چیز ہے کہ آدمی اس دور تلاوت کرے دعائیں مانگے, لیکن صحیح پڑھے تو دل خوش ہوتا ہے. صحیح پڑھے हमारा कलाम कोई गलत पढ़े, शायरों का कलाम, कहता भाई ना पढ़ो लेकिन इसकी टांग ना तोड़ो, खुदा के लिए टांग ना तोड़ो हमारे कलाम। अल्लाह ताला का कलाम कलामुल मुलूक है, बादशाहों का कलाम, उसको गलत पढ़ना कितने अफसोस की बात। थोड़ी देर खारी साहब के पास नहीं बैठ सकते, पुराने पुराने लोगों की हालत ये, नए लोगों की बात नहीं हो रही। नए लोग फिर भी मैं देख रहा हूँ वो जो दर्श में आने वाले एक बड़े मियाँ ऊपर आके पढ़ते खारी रिजवान साहब से, और भी एक दो साहब, एक साहब उधर सुबह आके पढ़ते। कहते रहने से बात असर करती है, लेकिन जिस अंदाज से होना चाहिए वो नहीं, जिस अंदाज से होना चाहिए वो तब्दीली नहीं। तो सही पढ़ने पर ये सारे सवाब वगैरह हैं। अगर कोई जैसे यासीन वल कुरान अल हकीम हा के साथ अगर हा ना निकाले, हकीम पढ़ेगा छोटी हा, तो वो सवाब नहीं मिलेगा। यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नक लमिनल मुअसलीन, तीन आयात पढ़ लिया, इतना तो याद होता ही है सबको, रुकू कर लिया, अगर जल्दी नमाज पढ़नी है तीन आयात काफी है। यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नक लमिनल मुरसलीन, ये मुफ्ती शफी साहब खुद ही सवाल कायम करते हैं यासीन का मतलब क्या है, खुद ही जवाब देते हैं। असल जवाब तो ये है इसका कि अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं, वल्लाहु आलम बिमुरादी, अल्लाह ताला इसकी मुराद जत। तमाम हुरूफ मुकत्तात काफ हा या आईन सौद अल्लाह ताला जानता है इसका क्या माने। बहुत से लोग रुमूज व असरार के पीछे पढ़ते हैं, जिसको अल्लाह ताला ने मुबहम रखा हमें भी मुबहम रखना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम बता देते, सहाबा हमें बता देते, पता चल जाता। जब मुबहम रखा है तो मुबहम रहने दो। अल्लाह, ये हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद का बेहतरीन कौल है, ये जीनत कुरान है, कुरान की जीनत, हुरूफ मुकत्तात कुरान की जीनत है। तो यासीन भी मुकत्तात है, लेकिन बाज कहते हैं कि ये अल्लाह ताला का नाम है। इमाम मालिक का कौल ये है कि ये अल्लाह ताला का नाम है, और बाजों का कौल ये है कि ये नबी अलैहिस्सलाम का नाम है। दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन मुफ्ती शफी साहब ने फिर ये लिखा है आगे कि अगर ये अल्लाह ताला का नाम है, अगर अगर सिर्फ सब मुत्तफिक हो जाते इस पर, मुत्तफिक नहीं है इसलिए इसमें वसात है। कोई कह रहा है नबी अलैहिस्सलाम का नाम है, जैसे नबी अलैहिस्सलाम की सिफत है रऊफुर रहीम, तो वो सिफत आम आदमी में भी कही जाती है, ये आदमी बहुत रऊफ है, या खाली रऊफ भाई कह सकते हैं, लेकिन रहमान भाई नहीं कह सकते, क्योंकि रहमान का मतलब बहुत ज्यादा मेहरबान, अब्दुल रहमान कहना पड़ेगा। अब्दुल रऊफ के बगैर खाली रऊफ कह सकते हैं, क्योंकि रऊफ का मतलब मेहरबान, रहीम का मतलब भी मेहरबान रहम करने वाला, रऊफ का मतलब नरमी वाला, मेहरबान नरम नरम दिल मेहरबान, और रहीम, ये सिफात नबी अलैहिस्सलाम के लिए भी हैं। लेकिन रहमान की सिफत सिर्फ अल्लाह ताला के लिए, रहमान रज्जाक ऐसे खास फाल के वजन पर अक्सर नाम ये मन्नान कहते हैं, मन्नान भाई, मन्नान का मतलब बहुत ज्यादा एहसान करने वाला, ये अल्लाह ताला का नाम। तो अगर ये नाम अल्लाह ताला का है तो बंदों को रखना ठीक नहीं है, और अगर ये नाम नबी अलैहिस्सलाम का है तो रखना ठीक है, लेकिन उसका रस्मुल खत क्या होगा, जिस तरह यासीन सूरत में लिखा है वैसा नहीं लिखेंगे, या अलिफ जबर या और सीन, जैसे हम उर्फ में लिखते हैं हमारे उर्दू वाले, इसी तरह यासीन किसी का नाम हो इसी तरह लिखते हैं, या अलिफ जबर या सीन या और नून सीन, इस तरह लिखें तो यासीन नाम रखना सही है। और खुद मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब के वालिद साहब का नाम भी यासीन था, मौलाना यासीन साहब हजरत गंगोई के वो शागिर्द और मुरीद थे, तो नाम रखने में हर्ज नहीं है, लेकिन उसको लिखने का तरीका वैसा होगा। तो एक हर्फ पर दस नेकियां और तीन हजार हुरूफ हैं, 3,00,000 नेकियां हर आदमी रोजाना कमा सकता है। फजर के बाद पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाह की एक तस्बीह, दुरूद शरीफ, इस्तिगफार, सूरह यासीन हर आदमी पढ़ सकता है, इसके लिए बैत होना जरूरी नहीं है। लोग शैतान, ये शैतान का वसवसा है, जब बैत होंगे ना फिर सारे काम करेंगे, जब हज करेंगे ना जब दाढ़ी रखेंगे। एक साहब यहीं पर थे, हमारे दोस्त आज आए नहीं, उनके वालिद साहब, तो उन्होंने उनके बेटे हाफिज, बेटों की दाढ़ी और अब्बा दाढ़ी नहीं रख रहे, बाद दफा ऐसा भी होता है, और बाद दफा ये भी होता है बेटों की दाढ़ी देख के अब्बा को शर्म आती है कि बेटे तो मुझसे भी बड़े मालूम हो रहे हैं, वो भी रख लेते हैं दाढ़ी। तो ये अच्छा, एक का एक नेकी दूसरी नेकी का सबब बन गई। तो उनके बेटे उनको कहते थे, लेकिन वो कहे नहीं नहीं अभी नहीं, अभी हम ऐसे हैं, जरा हम हज करने जाएंगे ना, सारे गुनाह से तौबा करेंगे और उस वक्त दाढ़ी रखेंगे। तो यहाँ बैठते थे, बैठते बैठते अल्लाह ताला ने तौफीक दे दी, जब बार बार कोई सुनेगा एक बात तो कब तक नहीं असर होगा। एक साहब ने हमारे एक दोस्त से कहा था, तुम्हारा मौलवी हर जुमे को कुछ ना कुछ दाढ़ी पे बयान करता है, मुझे शर्म तो आने लगी है, उम्मीद है कि अमल भी हो जाए, शर्म आने लगी है। अल्हम्दुलिल्लाह एक नौजवान ने, वो बैठता है बिल्कुल दाढ़ी मोछ साफ है, लेकिन हर जुमे को बाद में मुसाफा के साथ हाथ भी चूमता है। पता चला हक सुनना चाहते हैं लोग, वो दाढ़ी मुंडाता है। हमने तो कभी उसको हकीर नहीं समझा ना कि तुम क्यों मुंडाते हो, हम उमूमी बात करते रहेंगे, हो सकता है कब उसके दिल में असर कर जाए। उसके दिल में दाढ़ी है जब तो वो सुन रहा है, उसके दिल के अंदर दाढ़ी है, उससे अच्छा गुमान रखना चाहिए। वो जब नेक माहौल में बैठ रहा है, इतना खरा खरा बयान सुन रहा है, इसका मतलब उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत मौजूद है। खालिफुल मुशरिकीन, मुशरिकीन की मुखालफत करो। अच्छा, मुशरिकीन की मुखालफत खास क्या है? मुशरिकीन उस जमाने के वो भी दाढ़ी रखते थे, उनकी मुखालफत मूछों को कतरवाओ। अभी पिछले दिनों में एक रिवायत देख रहा था, उसमें मल लम याखुद शारी बहू, जो अपनी मूछों को न कतरवाए फलई समिन्ना, वो मुझमें से नहीं है। जो अपनी मूछें न काटे फलई समिन्ना, वो मुझमें से, क्योंकि मुशरिकीन भी दाढ़ी रखते थे लेकिन वो मूछें बड़ी बड़ी रखते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खालिफुल मुशरिकीन, मुशरिकीन की मुखालफत करो। वफिरुल्लहा वाहफुश शवारिब, दूसरी रिवायत में मूछों कतरवाने का हुक्म पहले है। इन हकुश शवारिब वाहफुल्लहा, इन हकुश शवारिब, दोषों को कतरवाओ, बारीक करो और दाढ़ियों को माफ कर दो, बढ़ने दो। तो ये बात भी आगे पहुंचाए। एक साहब आते हैं जुमे में, सिर्फ जुमे में आते हैं, उन जुमे में तो सुनते थे, अलग से भी मुझे कहना पड़ा, उनकी मूछें इतनी यहां तक आ रही थी, मुझे बड़ी देख के तकलीफ होती। हमें क्यों तकलीफ होती? हमारे आका को इससे कराहत होती थी, हम अपनी तरफ से कैसे तकलीफ पैदा कर ले। नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे चेहरे को देखकर चेहरे अनवर फेर लिया, फिर हमें कैसे मोहब्बत हो जाए? मुझे कहना पड़ा कि थोड़ी इसको कम कर ले, जिसको बढ़ाना चाहिए वो तो ऊपर जा रही है, जिसको घटाना चाहिए वो नीचे आ रही है, मामला उल्टा है। एक आदमी एक बस्ती से गुजर रहा था तो उसको कुत्ते भौंकने लगे। नए बस्ती में जाते हैं ना, कुत्ते जो है वो थानेदार लगे होते हैं, उसको अपने थाने के हुदूद तक पहुंचा के आते हैं, बाइक और गाड़ी वालों को भी भौंकते हैं, इतने आजकल के जो है जिम्मेदार हो गए हैं ये लोग कि वहां तक पहुंचा के आते हैं। तो भौंकने लगे तो आदमी क्या करता है, पत्थर उठाता है। उसने पत्थर उठाना चाहा तो पत्थर जमीन में धंसा हुआ, उठा ही नहीं। उसने कहा इस बस्ती के लोग भी अजीब हैं, कुत्तों को खुला छोड़ देते हैं, पत्थरों को बांध देते हैं। तो जो चीज नीचे आनी चाहिए दाढ़ी वो ऊपर जा रही है, मूछें जो ऊपर जानी चाहिए बारीक हुई वो नीचे आ रही है, पैंचा जो खुला रहना चाहिए वो ढका हुआ है, जो सर जो ढका होना चाहिए आज वो खुला हुआ है। आप देखिए नमाजियों की हालत। अभी पंजाब में हमारा जाना हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह बात करता हूँ मैं, लोग समझते भी हैं। काश के अगर ये अहले इल्म भी इस पर बात करने लगे, आइम्मा और उलमा यहाँ जमा थे खत्मे नबूवत के हवाले से, मैंने उन्होंने खुद कहा कुछ बात करके दुआ करा दूं। मैंने कहा भाई हम लोग, अल्लाह ताला ने हमें इमाम बनाया है, इमाम ऐसा होता है जैसे अपने जैसे बच्चों का बाप होता है, जो नमाज पढ़ना है उसको सिखाओ, भाई ये पैंचे ऊपर कर लीजिए, जज़ाकअल्लाह। आपको अगर तहक्कुमाना लहजे का इख्तियार नहीं है, क्योंकि कमेटी से पैसा लेते, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई पैसा देने वाला नहीं, क्योंकि हम लेने वाले नहीं है अल्लाह का शुक्र, तो हम कहते भाई पैंचा ऊपर करो, वो ये देख फौरन ऊपर करता है, वो समझता है ये तो हुक्म कर रहा है, ये दिस इज माई ऑर्डर। क्योंकि क्योंकि भाई ये नबी आपकी नमाज खुद खराब होगी, इसमें किसी का क्या जा रहा है भाई, मेरा क्या फायदा होगा? आप ऊपर कर लेंगे तो मुझे कमीशन मिलेगा, कमीशन ये मिलेगा आप सुन्नत पे अमल करेंगे आपको अल्लाह का खुर्ब मिलेगा। तो अगर ऐसा नहीं कहते, ऐसे कहेंगे तमाम साथियों से गुजारिश है कि अपने अपने पैंचे ऊपर रखा करें नमाज के अलावा भी, और सरों को ढकने का एहतमाम करें तमाम साथी। अब अभी नहीं कर सकते ना, अगले नमाज में सोचेंगे भाई इमाम साहब ने कहा था वाकई टोपी पहनना चाहिए। फैशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस तवज्जो नहीं है, बगैर टोपी के नमाज हो जाती। मैं कहता हूँ बगैर कुर्ते की भी हो जाती, कभी बगैर कुर्ते की भी तो पढ़ के देखो ना, बगैर कुर्ते के नहीं पढ़ते, बनियान के बगैर भी हो जाती है नमाज, बनियान के बगैर हो जाना और है आला दर्जे की। मैंने फिर पूछा अभी माँ के मजमे से सफर के दौरान कि आप लोग क्यों नमाज पढ़ने आते हैं भाई, ताकि लोग नमाजी कहें दिखाने के लिए? नहीं तौबा तौबा, आदमी कहेगा नहीं, किसी से बदगुमानी भी नहीं करनी चाहिए, हर आदमी अल्लाह के राजी करने के लिए, اللہ کی کا قرب حاصل کرنے کے لیے ثواب کے لیے آتا ہے. تو جب ثواب کے لیے آتے ہیں تو زیادہ ثواب ملے گا نا. آپ جب ٹوپی پہن کے آئیں گے پائچے اوپر رکھیں گے تو آپ کو تو اللہ کا قرب زیادہ ملے گا. تو اس کی فکر ہونی چاہیے. یہ کیا کہ یہ بھی پڑھ رہے ہیں نا, یہ بھی بڑی بات, بعض آئمہ یہ بھی آ جاتے ہیں بڑے, ہم نے کہا کیا کیسا احسان کرتے ہیں, نہ آؤ تمہارا کیا, ہمارا کیا نقصان ہوگا, تمہارا ہی نقصان ہوگا. تمہارا رزق میں جب تنگی ہوگی, جب اللہ یاد آئے گا, جب ساری دنیا لات مارے گی, پھر آؤ گے. تو کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کی ایسی حالت ہو گئی؟ واف عنا واغفر لنا, یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. واغفر لنا, معاف فرما دیجیے کیا, امحو آثار ذنوبنا. الحمدللہ, صرف معاف ہی نہ کیجیے بلکہ ہمارے گناہوں کے نشانات کو بھی مٹا دیجیے. واف عنا کا ترجمہ کیا لکھا ہے علامہ آلوسی کر رہے ہیں, یہ امحو آثار, امحو محف کر دینا, آثار ذنوبنا, ہمارے گناہوں کے نشانات کو بھی اللہ مٹا دیجیے. واغفر لنا, اور معاف کر درگزر فرما دیجیے. ورحمنا, اور صرف یہی نہیں بلکہ رحم بھی فرما دیجیے. صرف معاف کر کے اچھا چلو معاف کر دیا جاؤ چہرہ ادھر ادھر کرو, نہیں, یا اللہ رحمت بھی فرما دیجیے. جو آپ پہلے رحمت فرماتے تھے, حضرت نے پھر اس کی مثال دی, ابا نے بلایا اور ابا سے ابا معاف کر دیجیے, اچھا اچھا معاف کر دیا جاؤ, جب دیکھو نالائقی کرتا رہتا نالائق, اب پھر کھڑا ہے, اب کیا کھڑا ہے, ابا آپ نے جیب خرچی بند کر دی, وہ بھی تو جاری کر دیجیے. ٹافی جو آپ دیتے تھے روزانہ 20 روپے 50 روپے, اب ابا کہیں گے اچھا اب ان کو اور جوش آئے گا, چلو بھائی یہ بےچارہ اس کو دوبارہ, یہ معافی کی علامت ہے کہ دوبارہ مہربانی بھی شروع کر دی, علامت ہے نا. یہ نہیں یہ سب نہیں کریں گے, اس کا مطلب دل سے معاف نہیں کیا ہے. دل سے معاف کرے گا تو خرچہ بھی جاری کر دے گا, چلو جاؤ دیا کوئی بات نہیں. اور حضرت فرماتے پھر اس کے بعد مانگو. اب ہر ایک کا حوصلہ الگ ہے. چھوٹا بچہ ہے تو وہ جو ہے وہ کہے گا ابا بلہ چاہیے گیند چاہیے مجھے, اور اس سے بڑا ہے تو کہے گا بائک چاہیے, اس سے بڑا ہے تو کہے گا گاڑی چاہیے, اس سے زیادہ سمجھدار ہے تو کہے گا مجھے گھر الگ چاہیے اور فیکٹری بھی چاہیے. جیسا جیسے اس کا حوصلہ ہوگا ویسا. تو جیسا بندہ ہے, یا اللہ صرف معاف نہ کیجئے, ہمیں اپنی ولایت خاصہ بھی عطا فرما دیجیے. واف عنا واغفر لنا وارحمنا, اپنی رحمت بھی نازل فرما دیجیے. انت مولانا, کیونکہ آپ تو ہمارے مولا ہیں, آپ کے سوا ہمارا کون ہے. انت مولانا, دیکھیے اہل علم کے لیے کتنی پیاری بات حضرت والا نے فرمائی. یہ حضرت والا ساری باتیں حوالہ دے کے فرماتے, یہ نہیں میں بیان کر رہا ہوں, یہ بحوالہ علامہ آلوسی سید محمد بغدادی. پہلے ضمیر کیا چل رہی, واف عنا واغفر لنا وارحمنا, یہ ضمیر مستتر کہلاتی, غائب سے مانگ رہے ہیں معاف کر دے. اور اب کیا انتا مولانا کے بعد کہ سب ورحمنا ہو گیا نا, معافی ہو گئی, تو آپ تو ہمارے مولا ہیں, اب آپ گویا نظر آ رہے ہیں, پردے ہٹ گئے گناہوں سے جو پردے تھے, یہ ضمیر بارز آ گیا یہاں پہ, اب آپ نظر آ رہے ہیں. انتا مولانا, انتا مولانا, آپ ہمارے مولا ہیں. اب اس کے بعد کیا ہے یہ بتانا مقصد, انتا مولانا, آپ ہمارے مولا ہیں, آپ ہمارے پالنے. انتا متولی اموری نا, یہ والدین سب, والدین اور سارے سرپرست, یہ سب ظاہری سہارا ہے. کتنے کوئی والدین نہیں ہوتے, سرپرست نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ پالتا ہے اس کو, اللہ تعالیٰ اس کو پالتا ہے. شداد کے بارے میں, شداد کے بارے میں روایت لکھی ہے مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں, الحمدللہ بہت سونے سنا ہوا ہے, یہ سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے پالتا ہے اس کے. جب جبریل امین سے پوچھا کہ تمہیں اسرائیل علیہ السلام سے تمہیں دکھ ہوا روح نکالتے ہوئے, کہا دکھ ہوا جب آپ نے جو بچہ تھا شداد, وہ جب آپ نے کہا کہ اس کی اما کی روح نکال دو, جو کہ لکڑی تختے پر, کیونکہ پانی کا جہاز جو تھا شپ اور کشتی وہ ٹوٹ کے بکھر گئی, اب یہ ماں بیٹے ایک تختے پہ تیر رہے تھے, آپ نے حکم دیا کہ ماں کی روح نکال لو. اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ بچے کا کیا بنے گا, بچے کا کیا بھائی, یعنی فرشتے کے دل میں رحم آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ تاثر سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے میرا آئندہ اور لاہ عمل کیا ہے. لاہ عمل کا کیا مطلب ہے, پروگرام, آپ پروگرام سمجھتے ہیں, لاہ عمل نہیں سمجھتے, اسی لیے میں جان کر لاہ عمل کہہ رہا ہوں. پروگرام کا ترجمہ دیکھیے ڈکشنری میں, لاہ عمل کہ آئندہ کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اب وہ اما مر گئی, اما ڈوب گئی پانی میں, اس کی قبر وہیں بن گئی. اب وہ شداد بیٹھا ہوا جو ہے وہ جا رہا ہے کنارے پہنچا, تو لوگوں نے دیکھ کے ماہی گیر تھے انہوں پکڑ لیے, لاؤ بھائی بچہ آ گیا, بچہ چھوٹا بچہ سب کو ہی اچھا لگتا ہے, اٹھایا پیار کیا اور اپنے سردار تک پہنچا دیا, سردار نے اس کو پالا, سردار نے اس کو پالا اور ایسا پالا کہ جیسے سردار پالتا ہے, اپنا بیٹا بنا لیا. अपना बेटा बना लिया। तो उन्होंने से यही पूछा कि तुम्हें और भी कभी, हाँ एक और, कि जब शद्दाद ने जन्नत बना ली, जब वो पैर रखने लगा आपने उसका रूह निकालो, यहाँ पे मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इतनी जन्नत बनाई कितने साल तक, कितने साल तक, और आप जब दाखिल होने लगा आपने कहा रूह निकाल लो, यहाँ पे मुझे तकलीफ हुई। फरमाया वही था, उसको पाला और उसने फिर अपना बेटा बना लिया सरदार ने, यहाँ तक कि बहुत चालाक और शातिर था, क्योंकि नेक तो था नहीं, चालाक और शातिर था। तो जहीन आदमी जैसा भी होता है तरक्की करता है, दुनिया में तरक्की की इसने, यहाँ तक कि अपने उसी सरदार के खिलाफ बगावत की जिसने पाला था, बगावत की और बगावत करके खुद लीडर बन गया और फिर बहुत बड़ा लीडर बन गया। फिर इतना इतना माल इसके हाथ आ गया, को खजाना, कि इसने कहा मैं जन्नत बनाऊंगा, अल्लाह के, अल्लाह जो कहता है ना, ये लोग कहते हैं अल्लाह के नबी रसूल क्या हम जन्नत में जाएंगे, हम जन्नत बना देंगे। तो इसने वाकई ऐसी जन्नत बनाई थी कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला के दौर में किसी कोई सहाबी वहां पहुंच गए, ये रिवायत मुफ्ती शफी साहब ने नकल की, और जाके हजरत मुआविया थे आके कहा कि मैं ऐसी जगह गया था वहां तो वाकई जैसा हम सुनते हैं जन्नत के बारे में वैसे हालात हुरे वगैरह तो नहीं लेकिन नजारे ऐसे। हजरत मुआविया ने अपना आदमी भेजा लेकिन फिर मिला नहीं, अल्लाह ताला ने उसको महव कर दिया कि लोगों की आंख से महव हो जाए। बाद में जो सुना है कि उसी खजाने से फिर ये जो जाली नूस और ये था दकिया नूस, इसने जो अपना महल बनाया था उसमें वहां से भी खजाना आया था, वहां तक पहुंच गए थे लोग, वहां से भी खजाना आया था। तो ये बता रहा हूं कि अल्लाह ताला कैसे पालते, शद्दाद को कैसे पाला, उस बे यार मददगार को, अब्बा पहले ही नहीं था, अम्मा भी मर गई, और उस बच्चे को अल्लाह ताला ने पाल के इतना बड़ा हुक्मरान बना दिया जिसने खुदाई का दावा किया और जन्नत बनाई। तो इसलिए अल्लाह ताला के अंदाज निराले, हम उसमें, वो रब्बुल आलमीन है, तमाम जहानों का पालने वाला है, सिर्फ इंसानों को नहीं पालता, जिन्नात को भी पालता है। जिन कितना खाता है, ज्यादा खाए तो आदमी कहता है ना जिन की तरह खा रहा है, जिन कितना खाता है, मछली कितना खाती है, मैंने सुनाया और सुना, मुझे बता आता है, मुझे हजरत मौलाना यूसुफ लिधियानी शहीद रहमतुल्लाह ताला का हंसता मुस्कुराता चेहरा जुमे का बयान कर रहे हैं हजरत, और फरमाया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सारी मखलूक की दावत की, आज हम दो रोटी के लिए परेशान है कि बस ये मिल जाए, सूदी कर्ज ले रहे हैं लोग, बताइए दो रोटी के लिए सूदी कर्ज, घर चलाने के लिए कर्ज ले रहे हैं, वाकई हालात बुरे हैं, लेकिन जैसे तैसे आदमी गुजारा कर ले। सहाबा के हालात को पढ़ें कि खाना हर वक्त मौजूद होता था, मौजूद हुआ खा लिया, नहीं हुआ सो गए, पानी वानी पी, कुछ ना कुछ रुकी सूखी खा ले, सूदी कर्ज लेना कितना बड़ा गुनाह है। बहरहाल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को की हुकूमत सब जानते हैं कितनी बड़ी थी, ये जो मस्जिद अक्सा बनाई है सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तकमील फरमाई, इनके अब्बा ने शुरू किया था और उन्होंने फिर जाके तकमील, दाऊद अलैहिस्सलाम ने शुरू किया, उनको पता था कि मैं बना नहीं सकूंगा, अपने बेटे को वसीयत कर गए कि तुम बनाना, और बेटे ने क्यों जैसे जल्दी बना दिया, क्योंकि जिन्नात हवा सब कब्जे में थे, जिन्नात भी काम करते थे, खाली मजदूर नहीं थे, मजदूर जिन्नात को बनाया हुआ तो उनको ख्याल आया कि या अल्लाह मुझे आपने ऐसी बादशाहत दी है तो मुझे दावत भी करनी चाहिए, लिहाजा मैं आपकी मखलूक की दावत करना चाहता हूँ, अच्छा भी कर लो। बहुत सारा खाना तैयार किया, मखलूक दावत आम सबके लिए, कितना खाना तैयार हो, 6 महीने तक, मौलाना धानी साहब के अल्फाज, मैंने अभी तक इसको कहीं पे लिखा हुआ नहीं पढ़ा इस किस्से को, वो जो मौलाना सुना 1986 की बात, 85-86 की बात, 6 महीने तक खाना तैयार कराया तकरीबन, और फिर उसके बाद कहा कि अब शुरू कराइए, या अल्लाह खाना बहुत तैयार हो गया, जिन्हों को हुक्म दिया वो पकाएं, हवा को हुक्म दिया डिफ्रीजर की तरह ठंडी हो जाए, 6 महीने में खाना खराब नहीं हो सकता, खाना खराब हो जाता है खाना क्यों नहीं खराब होगा, डिफ्रीजर में भी खाना मुश्किल होगा। हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने हवा को हुक्म दिया सर्द हो जा, और सारी चीजें बड़े बड़े देख, अब काज शुरू कराएं, किससे शुरू कराएं, बहरी से या बर्री से, समंदर से या जमीन से, है अल्लाह बहरी से करीब है समंदर, वहां से शुरू करा, एक मछली आई और सारा खाना 6 महीने का बना हुआ सारा एक लुकमे में निकल गई, एक लुकमे, हवाई जहाज ये पानी के जहाज को उलट देती है, शिप को उलट देती है, इतनी ताकतवर होती। आदमी पूरा पेट में चला गया नूह अलैहिस्सलाम, तो पूरा खा लिया और अभी भी देख रही है जी। सुलेमान अलैहिस्सलाम हैरत से देख रहे हैं। उसने पूछा और कुछ है, तो क्या उन्होंने कहा सारा खा गई, अभी पूछ रही है कुछ और है। मौलाना धानी साहब का चेहरा मेरे सामने मुस्कुराता हुआ, फरमाया कि मेहमान से भी क्या ऐसा कहते हैं कहीं कि और कुछ क्यों मांग रही है, तो खिला अगर तूने मेजबानी की है तो। ये बताना चाहते थे अल्लाह ताला। उसने मछली ने कहा ऐसे दो लक्मे अल्लाह ताला मुझे सुबह शाम खिलाता है। और सिर्फ इंसानों का रब नहीं है, वो मछलियों का भी रब है, वो हाथी घोड़े का भी रब है, वो सांप और बिच्छू का भी रब है, वो सांप और बिच्छू का भी रब। जन्नून मिस्री रामुल्ला ताला ने देखा कि एक कछुआ आके रुका, एक कछुआ आके रुका और उसके पीठ पर एक बिच्छू बैठ गया। कछुए का पीठ तो बहुत ही सख्त होती है, वो तो हथौड़ा भी मारो नहीं टूटेगा, फिर गोली से ही बात दफा नहीं टूट, तो इतनी सख्त। उसके ऊपर बिच्छू बैठ गया। अब वो समझ गए, उन्होंने एक कश्ती ली, कश्ती रखी हुई और कश्ती पे साथ साथ जा रहे हैं। बिच्छू जो है वो सवारी पे जा रहा है, कछुए की सवारी पे, और जाके जहां वो जा रहा वहीं गए। देखा कि उस पार में जाके बिच्छू एक आदमी शराबी किस्म का लेटा हुआ और एक सांप उसको डसने वाला है। सांप आ रहा है, काला सांप, और उसको डसने वाला है। यहां तक के जैसे ही वो करीब पहुंचा यहां से बिच्छू, जाके बिच्छू ने उसको डस लिया। बिच्छू सांप से भी ज्यादा वजनी था, यानी जहर के एतबार से सांप वहीं पे ढेर हो गया। हजरत जिन्नों ने मिस्री ने उसको उठाया, उस आदमी को, देख कुदरत का तमाशा देख, तू गफलत में पड़ा हुआ है, अल्लाह ताला ने तेरी कैसी हिफाजत की, अभी सांप डसता तो कोई पूछने वाला ना होता, मैं इसीलिए साथ आया, समझ गए कोई कुदरत का करिश्मा होने वाला है। लिहाजा उसको जगाया, उसने तौबा की, जन्नू ने मिस्री रामुल्ला ताला के हाथ पर और अल्लाह पर से तौबा की कि मैं गफलत में पड़ा हुआ। तो ये बता रहा हूं कि अल्लाह ताला किस तरह अपने मखलूक की परवरिश करता है और किस तरह अल्लाह ताला हिफाजत करता है। सांप बिच्छू को भी वो रिस्क देता है। डायनासोर हमने किताबों में पढ़ा है, सुना है कि वो मखलूक खत्म, इतना दुनिया का हाथी से भी ज्यादा खाने वाला और वजन में ज्यादा होता था, ये सबको अल्लाह ताला खिलाता है। शेर को अल्लाह ताला खिलाता है, हाथी को, तो हम जरा से रिस्क के लिए परेशान हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का वो पालने वाला है। तो ये बता रहा हूं यहां पे, वाफ़ अन्ना वाफ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। अब रहमत फरमा दीजिए ना, अब पता चला कि अल्लाह ताला राजी हो गए। अब एक वजह होती है कि जैसे बच्चे से अब्बा नाराज हुए थे तो हमारे फरमाते थे कि बच्चा बाद दफा इतना लंबा चौड़ा हो जाता है कि अब्बा कमजोर पड़ जाता है, वो डांट सुनता भी नहीं, कहता नहीं नहीं बस रहने दो अब्बा, हमें ज्यादा मत कहा करो, हमारे सामने मत बोला करो, फिर गुस्ताखियां करने लगता है। तो अब्बा अब सोचता है क्या करें, हम तो खुद कमजोर पड़ रहे, अगर ये हाथ रोक लेगा मेरा, हाथ उठा लेगा, फिर मैं क्या करूंगा। फिर वो चुपके से दूसरे महल्ले जहां वो जाता है ना, उस महल्ले के लड़कों से कहता है चुपके से कि इसके जरा फेटी लगाओ अच्छी तरह धुनाई लगाओ, ताकि फिर ये मेरे पास आएगा। फिर वो उसकी धुनाई लगाते हैं, फिर वो जाता अब्बा इन्होंने मारा है, हाँ अब आया ना, ये फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, या अल्लाह आपकी नाफरमानी की वजह से जो हमें काफिर मार रहे हैं आप उनके मुकाबले में हमारी मदद फरमा दीजिए। फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, ये दुआ इस हालात में बहुत मांगनी चाहिए, इसमें इस्तिग़फार भी है, इसमें काफिरों पर मदद भी है। फंसुरना, या अल्लाह हमारी मदद फरमाइए, इज्तिमाइए हम सब की मदद फरमाइए, इसमें मुसलमान सब शामिल हो गए। फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, तमाम काफिरों के मुकाबले में आप हमारी मदद फरमाइए। फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और इस तरह अल्लाहुम्मा अइज़ल इस्लाम वल मुस्लिमीन, या अल्लाह मुसलमानों को इज्जत अता फरमाइए, इस्लाम को और मुसलमानों को इज्जत अता फरमाइए। वअज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन, और देखो ठीक है इस्लाम की इज्जत तो ठीक है, लेकिन दूसरों के लिए बद्दुआ, दूसरों के लिए जो इस्लाम को मिटा रहा है, जिन्होंने सहाबा को नुकसान पहुंचाया, 40 या 50 सहाबा को शहीद किया, नबी अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बद्दुआ फरमाई, उनके लिए फरमाई, जिसने आपको तकलीफ दी आपने जात के लिए नहीं फरमाई कभी, जात के लिए, अबू लहब के लिए, अबू उसकी बीवी उम्मे जमील जो आपके रास्ते में कांटे बिछाती थी और उमैया बिन खलफ, इन सब के लिए आपने बद्दुआ नहीं फरमाई, लेकिन सहाबा को जिन्होंने नुकसान पहुंचाया, शहीद किया, आपने 40 दिन या मुख्तलिफ रवायात में आपने रोजाना फजर के बाद कुनूत नाजला पढ़ी, जो आज भी बाद आइम्मा पढ़ रहे हैं। अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम, अल्लाहुम्मा मज़्ज़िक जमअहुम, अल्लाहुम्मा दम्मिर दियारहुम, अल्लाहुम्मा ज़लज़िल अक़दामहुम। ये क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बदअहदी की, हमारे साथियों को शहीद किया, सहाबा को आपने उनके लिए, तो यहाँ पे अल्लाहुम्मा अज़्ज़ल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन, और जलील कर दे और मजबूर कर दे और ताबे कर दे, आजिज कर दे, अज़िल्ला का सारा तर्जमा काफिरों को मुशरिकीन को, ठीक है, ये थोड़ी की दुनिया बिल्कुल कुफर से पाक हो जाएगी, लेकिन रहे, लेकिन इस्लाम के साए में रहे, शौकत इस्लाम की रहेगी, इस्लाम की शौकत मकसूद है, इस्लाम की शौकत मकसूद। एक और दुआ जो हजरत वाला ने सिखाई थी पिछले दिनों, वो हजरत वाला के बयान चल रहा था, अल्लाहुम्मा इन्नी, आजकल अक्सर लोग बीमार हो रहे हैं, ये दुआ पढ़नी चाहिए। एक तो आफियत की दुआ, आफियत की दुआ जिसने नहीं मांगी उसने गोया कोई दुआ नहीं मांगी, आफियत की दुआ रोजाना मांगनी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफिया, हजरत अब्बास ने जब कहा अल्लिमनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई दुआ सिखा दीजिए, आपने फरमाया कि सलुल आफिया, अल्लाह ताला से आफियत मांगा करो। फिर फरमाया, फिर अर्ज किया और कुछ सिखा दीजिए, फरमाया सलुल अफ्व वल आफिया। अब इसका तरीका क्या होगा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अफ्व वल अस्अलुका अफ्या वल आफिया, अल्लाह वल माफाता फि दुनिया वल आखिरा, या अल्लाह हम आपसे माफी भी तलब करते हैं और आफियत भी तलब करते हैं। और आफियत का मतलब मुल्ला अली खारी के हवाले से हजरत वाला बयान करते थे, हदीसों की शरह अक्सर हजरत वाला मुल्ला अली खारी से लेते थे और कुरान करीम की शरह अक्सर अल्लामा आलूसी अस सैयद महमूद बगदादी से लेते थे। इसमें क्या है, आफियत क्या है, हम कहते हैं बहुत आफियत है अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामतु फिद्दीनी मिनल फितना, आफियत से वो है जिसका दीन फितनों से महफूज है, आमदी गामदी के चक्कर में ना पड़ जाए, फेसबुक यूट्यूब और मिर्जा और इंजीनियर के चक्कर में ना पड़ जाए, वरना ये आफियत से नहीं है, वरना ये आफियत से नहीं, ये आदमी करना है गुनाह और चीज, टीवी देखने वाला यानी गाने देखने वाला सुनने वाला ऑल फॉल्स अपने आप को गुनाहगार समझता है, लेकिन इन सब को देखने वाले, मैं बहुत तहकीकी मवाद देख रहा हूँ आजकल, बहुत अच्छा समझता है, जैसे कि अलगीबत अशद्दु मिन अज़्ज़िना क्यों फरमाया भाई, गीबत क्या, कहाँ दो बात कह लेना, कहाँ किसी औरत की आबरू रेजी करना, वजह क्या, गीबत करने वाला अपने आप को अच्छा समझता है और बदकारी करने वाला अपने आप को बदकार और बुरा समझता है, ये फर्क। अपने दोस्त को जगाओ, उसकी आंख खुद बंद हो रही, वहां बराबर में बैठो तनवीर, वहां बराबर में बैठो, इसको बार बार इसके हाथ दबाते रहो, ऊपर बैठ जाओ ना, ऊपर बैठ जाओ, तो आपको खतरा है कुर्सी गिर ना जाए, है ना, कुर्सी हल्की है आपके लिहाज, इसलिए कह रहा हूं मुस्तकिल सकीना नाजिल हो रहा है उन पर। तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफिया, दीन सलामत रहे फितनों से, तो गाना देखने वाला, टीवी देखने वाला, एन गैन ऑल फॉल, एक दाढ़ी वाले दोस्त ने बताया बहुत फायदे की चीज, 200 किस्तें मैंने देखी, तुगरल तुगरल बने क्या था ड्रामे की, बाश अर्तुगल अर्तुगल ये बता रहे हैं, 200 किस्तें बताई, इसमें एक औरत नहीं है, सब सब बिल्कुल बापरदा और कोई सारी हर चीज उसमें, लेकिन गुनाह को फिर भी लोग गुनाह समझते हैं, गुनाह को जो आदमी अच्छा, जब आदमी इन सबों को देखता है आमदी गामदी को, समझता है मैं तो पता ही नहीं था, ये तो मिर्जा अजीब बातें कर रहा है, ये फलाना ऐसे ही बातें कर रहा है, पूरे इसरार, तो ऐसी इसरारी बातें करते सारे ओलमा की धज्जियां उड़ा देते, क्योंकि खुद आलिम नहीं था ना, तो ओलमा के खिलाफ होते ऐसे लोग। ये अल्लाह ताला मौलाना अब्दुल सत्तार साहब को जजा खैर दे, उनकी हिफाजत फरमाए, हाफिज अल्लाह ताला, वरना इससे पहले वो उसी का हाशमी का तूती बोल रहा था, औरत की आवाज, हमारे एक दोस्त टहल रहे थे तो वो एक बड़े मियाँ सुन रहे थे उसका दर्स सुबह सुबह, तो हमारे दोस्त हजरत के खलीफा है, वो मुझसे कहने, मैंने कहा हाँ बहुत मजेदार आवाज है ना, औरत की आवाज सुन रहे और दर से कुरान दे रही औरत, तुम्हें कोई मर्द नहीं मिला कि जो दर से कुरान दे, कोई आलिम नहीं मिला गैरों के नुमाइंदे। तो ये कहता हूँ ये फितने में मुब्तला होना आजकल बहुत आसान है। मुझे बताया फिरोज मेहमान साहब के पास आने वाला, हजरत वाला की जियारत करने वाला, वो मिर्जा इंजीनियर के चक्कर में पड़ा हुआ। बताइए क्यों पड़ा हुआ है? वही देखना, ये देखो कैसी बातें कर रहा है। अब वो और सुन रहा है और सुन रहा है, उसको भी सुन रहा है, हर ऐसी चीज को सुन रहा है जो गलत। और जो इतने अरसे सुनते रहे जो रासिखीन फिल इल्म है, जिन्होंने जिंदगियां लगा दी, ओ ये तो वही पुरानी बातें करते रहे, नई बात लाओ ये नहीं। इसीलिए दीन सलामत हो फितनों से, फितना आजकल का यही सबसे बड़ा फितना। वरना ऐसा नहीं है आजकल और बस ये फेसबुक यूट्यूब उधर चले गए और ऑल फॉल चीजें देखने लगे। गुनाह को कम से कम आदमी गुनाह समझे और गलत को गलत समझे, अहले इल्म की सोहबत में बैठे। और सलामत फिल बदन फिल जिस्म मिन सय्यिल असकाम, जिस्म सलामत हो जुमला बीमारी बड़ी बीमारियों से। आजकल नजला जुकाम सबको है, ये बड़ी बीमारी नहीं है, इसमें परेशान ना हो, इससे गुनाह माफ होते हैं, बुखार से गुनाह माफ होते हैं, अगर इसमें आदमी नमाज भी पढ़ता रहे। उस जमाने में नमाज छोड़ने का तसव्वुर नहीं था, आज जरा बुखार होता आदमी नमाज छोड़ देता है। बीमारियों से गुनाह माफ होते हैं। लेकिन सय्यिल असकाम क्या है? खुदा ना खास्ता फालिज लकवा ऐसी, खुदा ना खास्ता गुर्दे फेल हो जाना, पथरी पड़ जाना। अब वो बवासीर, अल्लाह ताला ऐसी मुझी अमराज से हम सब की हिफाजत फरमाए। तो जो आफियत की दुआ मांगेगा, इधर आके बैठिए मौली शहजाद साहब, यहाँ आइए। आपका दिमाग पता नहीं कहाँ लगा हुआ है, बयान में कहाँ है आप? आना है तो सही से आए, वरना हमने किसी को पाबंद नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह, बस थोड़ा सा रह गया, मैं खुद भी थक गया हूँ, पानी पी पी के किसी तरह गुजारा कर रहा हूँ। एक शायर को पानी दे दिया ना, बहुत देर से पढ़ रहा था, तो उसने कहा हलक सूख गया, तो उसने कहा पानी मिलेगा, तो पीछे से किसी ने हुटिंग की, पानी ना दियो फिर ताजा दम हो जाएगा, फिर सुनाने लगेगा, पानी दो ही मत ताकि दोबारा शुरू ही ना हो। तो हमारी भी रजिस्ट्रेशन हमारा करीब आ गया। तो एक तो ये आफियत की दुआ रोजाना मांगे पाबंदी से, अपने घर वालों को सिखाए, कुछ नहीं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफिया, इतना कहना है मुश्किल काम है। या अल्लाह हमें आफियत दारेन अता फरमा, ये तो कह सकते हैं आफियत दारेन, दोनों जहानों की आफियत, ठीक है। और दूसरे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकस सिहत वल इफ्फत वल अमानत वल हुस्नल खुल्क। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकस सिहत, या अल्लाह मैं आपसे सेहत का सवाल करता हूँ, आपसे सेहत मांगता हूँ, तबीयत नासाज हो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सिहत वल इफ्फा, हजरत फरमाते थे इफ्फत से सेहत का ताल्लुक है, सेहत का ताल्लुक इफ्फत से, जो अफीफ रहेगा वो सेहतमंद भी रहेगा, जो गड़बड़ करेगा जवानियां जाया करेगा सेहत भी खराब होगी उसकी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सिहत वल इफ्फा वल अमानत, और इफ्फत कैसे कायम रहेगी? जब अमानत में खयानत नहीं करेगा, नजर की हिफाजत करेगा। अमानत में खयानत की और गड़बड़ शुरू हो गई, अफीफ नहीं रहा फिर, अब गैर महरमों को देख रहा है, अब उसके बाद नापाक हो रहा है, कितनी कितने गुनाह में मुबतला हुए, एक नजर की हिफाजत न करने हुए कितने गुनाहों में आज नौजवान मुबतला है। फिर कहते हैं कि बस क्या करें, हल्का हल्का सा दर्द रहता है पिंडलियों में, कमजोरी हो जाती है, चक्कर आते हैं, ये जवानी नई जवानी मांझा ढीला, तो कहते टेक लगा के बैठते हैं ताकि बताइए ये क्यों है। हर एक से बदगुमानी ना करें, लेकिन अक्सरियत का हाल यही है, और बड़े भी इस मुस्तस्ना नहीं है, लिहाजा ऐसी चीजों से आदमी दूर रहे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सिहत वल इफ्फत वल अमानत व हुस्नल खुल्क, और जब इफ्फत रहेगी अमानत रहेगी तो हुस्न खुल्क भी रहेगा। बाहर बदनिगाही करेगा, घर में जाके बीवी से लड़ेगा, हुस्न खुल्क कहां रहा? अरे कहां से आ गई काली कुलेटी, अम्मा को पता नहीं 11 नंबर का चश्मा लगा के गई थी, फलानी इतना घूम रही, रास्ते वालों को देख के आया ना, वहां तो मेकअप शेकअप हर तरह की घूमने वाली, उसको देख के आया, घर वाली पसंद नहीं आ रही, होटल में आप बैठ के खाएं कौरमा बिरयानी शाहीन शेंडवारी से खाना खा के आए तो घर में दाल रोटी अच्छी लगी या आलू की भुजिया गोभी का सालन, कहेंगे ये गोभी है या गोभी है, समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आजा बाहर छोड़, बाहर से जो भूखा आएगा, बिल्कुल भूखा है, सुबह का गया है शाम को भूखा आया, जो मिलेगा उसको ऐसे खाएगा बस, वहां मदर साहब बयान करते थे कि एक रईस साहब ने की दावत की, एक गरीब ने, गरीब किसान टाइप का था, अरहर की दाल चटनी रोटी ये सब खाने वाला, कहा था आप दावा यहाँ आएंगे, गरीब परवर होते थे, चलो भाई आएंगे, खाने बिठाया, जोर के बाद का दाकी दावत बैठे हुए, अब लाके दस्तरखान बिछा दिया, पानी का गिलास रख दिया। ऐसे मौके पे मैं एक शेर पढ़ता हूँ, सलाद भी लाके रख देते हैं लोग, मैं शेर पढ़ता हूँ एक शायर का, इलाजे तिश्नगी लाओ खिलौने क्या सजाते हो, सलाद रख दिया, गिलास रख दिया, प्याले रख दिए, इलाजे तशनगी लाओ खिलौने क्या सजाते हो, सुबह से जाम से शीशे से पैमाने से क्या होगा। अब रईस साहब बजबाने हाल ये शेर पढ़ रहे हैं, तो फिर लाई नहीं रहा, चार बज रहे, अरे भाई क्या हो गया, अब तो असर का टाइम होने, हाँ हाल बस ला रहे हैं। अब उनके पेट में चूहे दौड़ने लगे, रोजाना क्या होता था जोहर से पहले या जोहर के बाद टाइम हो गया अभी खाने का, लाओ भाई खाना खा रहा, अच्छा खाना भी अच्छा नहीं लग रहा। उस दिन उनको भूख लगी तो अरहर की दाल चटनी साग, जो लोग साग होते हैं ना वो जो गांव वाले पकाते हैं, अच्छा भी बनाने की बात होती है, अच्छा भी बनाते हैं साग और रोटी, हल्की गजा खूब मजे से खा रहे हैं रईस साहब, बहुत, अरे तुम्हारे यहाँ तो बहुत अच्छा खाना पकता है, वाह मैं तो पता ही नहीं था तुम्हारे, कहा क्या बात खाने की नहीं है, आज आपको पहली दफा भूख लगी है, तो जब भूख लगेगी तो हल्का फुल्का खाना भी अच्छा लगेगा, जब भूख नहीं लगती आप देख लें, आप बच्चे आजकल हमारे पापड़ खाते हैं टॉफी खाते हैं, इससे भूख मर जाती, इसलिए कहते खाना खाया नहीं जा रहा, अच्छा खासा खाना भी नहीं, आप पापड़ टॉफी बंद कर दे भूख लगेगी जैसा तैसा भी खाएगा, यही गजा है असल, पापड़ और पापड़ के का आप केमिकल देखें तो आप खुद आंख बंद कर लेंगे, देखा नहीं जाएगा, बच्चे हमारे खा रहे हैं आराम से, हमारे जमाने में पापड़ वापड़ था ही नहीं, झापड़ मिलता था, नहीं खाओगे तो झापड़ मिलेगा, ये रोटी दाल है, रोटी है ये दाल भी ऐसी कैसे वजू हो या ना हो इस पे इख्तलाफ हो जाए ओलामा का, इतनी पतली दाल बाज दफा, और दही रोटी से खाना खा लेते उस जमाने में, इतना थोड़ी होता था, लिहाजा ये आदत होनी चाहिए बच्चों की। तो ये बता रहा हूं कि सेहत और सेहत का ताल्लुक अल्लाहुम्मा इन्नी हुस्न खुल्क, हुस्न खुल्क कैसे होगा, जब बाहर आदमी नजर की हिफाजत करके आएगा, अब घर में आके जो मिला अल्लाह का शुक्र अदा किया, आयशा बादल मौत, तो सब कुछ हो गया, उसने खुल्क भी मिल गया। मैंने अभी हैदराबाद में और बयान किया अल्हम्दुलिल्लाह, जो सिंध में मस्तूरात के मदरसे में था, मैंने कहा मस्तूरात पूरा बुरका, आंखें सिर्फ खुली और ग्लव्स और पैरों में मोजे, बिल्कुल बिल्कुल बाशरा, लेकिन जब घर जाएंगी तो शौहर से लड़ाई शुरू, ये बाहर तो आपका पर्दा ऐसा है और जाके वहां जबान की हिफाजत का क्या हाल, हुस्न अखलाक नहीं है तो दीन कहाँ है फिर। फरमाया मुझसे कयामत में सबसे ज्यादा करीब वो होगा जिसके अखलाक अच्छे होंगे, जिसके अखलाक अकमलकुम ईमानन अहसनकुम खुलका, तुम में से बेहतरीन ईमान अकमल ईमान वाला वो है जिसके अखलाक अच्छे। अब वही बात, किसी ने अखलाक को ले, अखलाक अच्छे होने चाहिए, अखलाक ही तो बद अखलाकी है ना कि अब गैर महरम आए और आप फिर भी मुंह उधर कर लें, ये बद अखलाकी कहलाती है, ये अखलाक नहीं है, अखलाक ये कि उससे बात मत करो, यहाँ पे अखलाक ये, लिहाजा शौहर के साथ या सास के साथ बदतमीजी करना, और चाहे हम अपने मर्दों को भी कहते हैं, ये नहीं कि मर्द भी माशाल्लाह पांचे ऊपर हैं, सर पे ताज है, खानखाई टोपी क्या है, ताज है, हमने अल्लाह वालों की गुलामी को सर पे सजा रखा है, और अखलाक कैसे कि हर वक्त गुस्सा नाक पे रखा रहता है, जब हमने जब किसी का हाथ थामा है तो उससे मशवरा करें, अभी पता चला इतने अच्छे खासे बड़े बड़े बच्चे और तलाक हो गई, क्या गुस्सा आता है बस, अब बच्चे कह रहे नहीं कोई असरात वगैरह है, तो फिर तो जिन ने तलाक दी आपने तो नहीं दी तलाक, अब असरात नजर आ रहे हैं, आप गुस्से का इलाज नहीं कराते, किसी के सामने छोटा बनते हुए तो शर्म आती है ना, गुस्से का इलाज नहीं कर, अब इस उम्र में जब क्यों बेचारी औरत भी बुढ़िया हो गई, खुद भी बूढ़े हो गए, अब तलाक दे के बैठे, ऐसे कितने फिर रहे हैं हमारे सामने, वो समझते हैं हमें और दूसरी मिल जाएगी, यहाँ पहली मिलना मुश्किल हो रही है, दूसरी कहां से मिलेगी इस उम्र में, और वो कहती है पहली को छोड़ा इसका कोई ना कोई इसके अंदर मसला होगा, मिलती नहीं है, आप देख लें तजर्बा करके देख लें कितने हमने कई दफा कोशिश भी की इसके फला जगह बात करा दें, बात तय होती नहीं है, उसमें इतने मसाइल निकलते हैं, बात तय होती नहीं, इसलिए जो मिल रहा है उस पर गुजारा करें, अब वहां पे जाके मिलेगी अच्छी वाली इंशाल्लाह, वहां पे जाके अच्छी वाली मिलेगी। मैंने खवातीन के इस्लाम में एक मजमून लिखा था, यही था कि वहां पे 70 हूरें मिलेंगी, तो औरतों के दिल से ये चीज निकाल ली जाएगी ये नहीं कि वहां भी औरत लड़ रही है कि आप भूरों के पास क्यों जा रहे हैं, हमारे पास क्यों नहीं रहते। वहां पे दिल से ये इनकबाज निकाल लिया जाएगा और सब यानी गिल जो गर्द गुबार है, कीना, अदावत, चपकलिश, ये सब चीजें निकाल ली जाएंगी जन्नत में जाने के बाद। तो इंशाल्लाह जो जिसकी सेहत अच्छी रहे, अमानत से रहेगा, अफीफ रहेगा, उसकी सेहत अच्छी रहेगी, अखलाक अच्छे रहेंगे, आयश बादल मौत इंशाल्लाह मरने के बाद अल्लाह ताला हमेशा हमेशा की ऐश अता फरमाएंगे। एक ऐलान सुन लीजिए, कल इंशाल्लाह, कल भी हमने आप लोगों को मसरूफ करने का प्रोग्राम बनाया। आजकल हालात का करंट मौजूद है, करंट क्या है, फलस्तीन के हालात सब जानते हैं। अब हमें तो इसमें इतना इदराक नहीं है जैसा आदमी जो जिसका जो मौजू होता है भाई। इसलिए कल हमने ऐसे बाज़ उलमा को यहाँ दावत दी है मगरिब से इशा, इतवार के दिन, कल इतवार है और मगरिब से इशा इंशाअल्लाह यहाँ पर फलस्तीन के मौजू पर और उसमें और सारे मौजू, ये हमें ब्रीफिंग देनी है क्या हो रहा है, क्या करना है। तबसरे तो हो रहे हैं, यहाँ इतने मर गए, शहीद हो गए, शहीद हो गए वो तो अल्लाह के पास चले गए, जो है उनका क्या बनेगा, हमें क्या करना है, हमने कोई अपना हिस्सा डाला, कंट्रीब्यूशन, बस खाली बस बातें कर रहे हैं, वो 2000 दे दिया किसी ने, 5000 दी, ये काफी नहीं। और मुस्लिम उम्मा को बेदार करना है। देखिए चंद लोग लड़ रहे हैं और कोई पूछने वाले बे इसी का क्या आलम, इसी को जगाने के लिए और जगहों पर प्रोग्राम हो रहा है। हमने कहा हम भी अपना हिस्सा डाल लें, 10 आदमी भी के दिल में बात आ जाए वाकई हमें जागना है और जगाना है, सिर्फ जागना ही नहीं बल्कि पूरी कौम को जगाना है। तो इंशाल्लाह इसके लिए कल साथी कोशिश करें फारिग होने की और दूसरों को भी बताएं। इंशाल्लाह मगरिब से इशा ये प्रोग्राम रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबीजिल उम्मीजिल करीम वाअफू